आज हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी आए हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आए और उसके बाद 1972 में जब मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पास की, अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूंकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, आपने भरूच, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि आदि स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब छोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया और वहां पर लगभग 18 वर्षों तक रहकर आपने वहां का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि देखा। और फिर 2010-11 में जब शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया, तो शांतिवन में रहकर तीनों ही कैंपस में, देश विदेश में आप अपनी सेवाएं देते हैं। मुख्य रूप से आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की प्रशिक्षिका हैं, SML की प्रशिक्षिका हैं और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इसीलिए समय समय पर पूरे भारत भर में कहीं राजयोग शिविर कराने, कहीं भट्टी कराने, कहीं SML के कोर्सेज कराने और कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराने के लिए आप भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हेडक्वार्टर में भी दादी रतन मणि के साथ उनके कारोबार में अपना योगदान देते हैं। जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। इन सब के अतिरिक्त मुरलियों का गहन अध्ययन करना और उसके आधार से अपने जीवन को गढ़ना और अन्य ब्राह्मणों को भी वैसा जीवन गढ़ने के लिए प्रेरणा देना। तो आज भी हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा के साथ, जो आज का हमारा स्लोगन क्या है, सच्चा राज ऋषि वह है जो संकल्प मात्र भी कहीं पर उसका लगाव नहीं हो। आज का सम्मान भी यही दिया है। तो आज हम इस गहराई को समझेंगे कि सच्चा राज ऋषि क्या होता है। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। सभी राजकोट के भाई बहने, बहुत अच्छा। पांडव भवन की तपोभूमि, प्यारे बाबा और दादियों की कर्म भूमि, आप सभी को यहां तपस्या करने का मौका मिला है। जब से बाबा के बने, हमने भोग मार्ग छोड़ दिया, योग मार्ग को अपनाया। ज्ञान से पहले देह और देह संबंधों में ही लगे रहते थे। इसी दुनिया की बातों को सोचते रहते थे। इंद्रिय रसों में डूबे रहते थे। कितना विस्तार है उसका। बाबा ने ऐसा सत्य ज्ञान दिया जो बुद्धि देहभान से ऊपर उठ गई। पूरा जीवन देह में, देह संबंधों में, दुनियावी प्रवृत्ति में, वैभव पदार्थों में, इसी में बुद्धि लगी रही थी। अब बाबा ने हम आत्माओं को जगा दिया। जब अपने आप को जानते ही नहीं थे, आत्म कल्याण की बात ही नहीं थी। बाबा के ज्ञान के प्रथम लेसन ने ही देहभान से निकाल दिया। अब हमारा अटेंशन विचारों को, भावनाओं को, वाणी को, कर्म को श्रेष्ठ बना दे। इसलिए हम महसूस करते हैं कि सही जीवन अब शुरू हुआ। हमें ब्राह्मण जीवन के कोई भी नियम मर्यादा मुश्किल नहीं लगते। हमें सहज स्वीकार हो गए। अब हमारा जीवन सही हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा याद रखो, हम योगी हैं, तपस्वी हैं। अब हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा घर छोड़ने के लिए नहीं कहते। पवित्र बनने के लिए कहते। तपस्वी बनना है तो पवित्रता चाहिए। बिना पवित्रता योगी नहीं बन सकते। योग शब्द ही अलौकिकता का सूचक है। तो बाबा ने कैसा एक नया मार्ग हमें बताया। कहां लोग गृहस्थी में डूबे हुए थे, या तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। उनके सामने दो ही रास्ते थे। उसमें रहते हुए न्यारा रहना ये बाबा ने हमें सिखाए। देहभान से वैराग्य है, जब है ही हम आत्मा तो हमारी बुद्धि देह में क्यों लगी रहे। न अति भोग मार्ग, न अति दमन का मार्ग, वो योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, पर हठ दमन से बनते हैं। बाबा ने मुरली में बताया था ना कि दवाइयां खाकर इंद्रियों को कमजोर कर देते हैं, ये कोई पवित्रता नहीं। पवित्रता तो हमारी स्मृति और वृत्ति में होनी चाहिए। हमारी स्मृति को ही बाबा ने चेंज कर दी। हमारे लिए शरीर एक साधन है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हमें इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, पर उसके अभिमान या आकर्षण में नहीं आना। इसलिए रोज आत्मभिमानी बनने का अभ्यास हम करते हैं। हम बार बार महसूस करते हैं कि हर क्षण शरीर में रहते हुए हम शरीर से अलग हैं। ये अभ्यास करना, क्योंकि मेन दरवाजा देह अभिमान है। उनको ये पता नहीं था भक्ति में, तो देखो उन्होंने घर बार छोड़े, कर्मेंद्रियों को कष्ट दिया, कोई आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई मौन कर लेते हैं, कोई उपवास करते हैं। बाबा ने हमें सहज मार्ग बताया, हमारी वृत्ति को चेंज किया, स्मृति को चेंज किया। बाबा कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा भाई भाई की युक्ति बाबा ने हमें सहज बताई। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है कि इतने गृहस्थ में रहने वाले भाई बहने पवित्र रहते। क्योंकि सत्य ज्ञान की अपनी एक शक्ति है। बाबा के सत्य ज्ञान ने आत्मा को जगा दिया। हर कर्मेंद्रिय को हम कमल फूल बनाते हैं। भी आंखें हैं देखने के लिए, तो बंद करके नहीं बैठना। सूरदास की तरह आंखें फोड़ने की बात नहीं, पर बाबा ने हमें सिखाया कि शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखना है। देखने में तो इन चर्म चक्षुओं से शरीर आता है, पर आत्मस्मृति आत्मदृष्टि बन गई तो देह का आकर्षण नहीं होता है। पवित्रता धारण हो गई, कोई सोच नहीं सकता है। बाबा हमें रोज सिखाते हैं, देह से उपराम करते रहते हैं। भले ऐसे नहीं है कि खाना नहीं खाते, पर आसक्ति को बाबा ने मिटा दिया कि हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए जो शुद्ध है, शाकाहारी है, जो सात्विक है, वो हमें खाना है। बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, एक मिनट भी बाबा को भोग लगाते हैं तो खाने का जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता। अब खाऊं खाऊं नहीं होता है। क्योंकि सात्विक बना दिया, बाबा को भोग लगाना, तो बाबा की याद आ गई तो वो चीजों का आकर्षण कम हो गया। शुद्ध खुद बनाओ और खाओ। होटलों में दूसरों के घर नहीं, अन्न शुद्धि की धारणा बाबा ने करा दी। तो स्वादेंद्रिय पर विजयी हो गए। देखो स्वाद पर विजय पाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें बुद्धि को बांधने वाली, उन्होंने उपवास शुरू किए, पर रस और स्वाद तो गए नहीं। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ढूंढने लगे कि क्या खाना है। ये खा सकते हैं, ये खा सकते, कितनी चीजों की फराली बना दी। वो रस और स्वाद पर विजय की बात तो रही नहीं। पर बाबा ने एक ही नियम ऐसा बना दिया कि पवित्र के हाथ का खाना है और किसी के हाथ का नहीं खाना है। खुद बनाओ, खाओ और खिलाओ। और ये लाइफ लॉन्ग धारणा है हमारी। चलो भाई सोमवार कर लेना उपवास, गुरुवार कर लेना, एकादशी कर लेना, ये सहज है, पर ये जीवन भर के लिए नियम है। क्योंकि मुख्य लक्ष्य बाबा का ये कि हमारी बुद्धि दिन रात खाने में ना लगी रहे। वो आसक्ति बाबा ने मिटाई, स्वादेंद्रिय पर जीत पाना। तामसिक नहीं खाते, बहुत मसाले वाला नहीं खाते, वस्त्र पहनते हैं, वो भी बाबा ने सादा जीवन उच्च विचार कर दिया। भला आप सभी का लौकिक अलौकिक दोनों में पार्ट है, हम सभी किनारे हो गए, हमारा एक ही पार्ट है। आप सभी डबल रोल प्ले करने वाले एक्टर है, पर अब इन चीजों का आकर्षण ही नहीं रहा, नहीं तो कपड़ों में कितनी बुद्धि जाती थी। इसका मैचिंग नहीं मिल रहा है, 10 जगह घूमते रहते थे। माताएं, और कितने भी गहने ले लो, चीजें ले आओ, तो भी संतुष्टि नहीं, क्योंकि कितनी चीजें निकली। उसमें से भी बुद्धि हट गई, समझ गए ना जीवन में वैल्यूएबल चीज क्या है, हमारे गुण संस्कार चरित्र, ये वैल्यूएबल चीज है। ये तो बाह्य चीजें हैं और इनका कोई अंत नहीं। तो ऐसे भी नहीं कि कोई गंदा अव्यवस्थित मैला रहना है, नहीं, वो भी कितनी स्वच्छता हमें बाबा ने सिखाई। ज्ञान नहीं था, एक ही साबुन से पूरे घर वाले नहाते रहते थे, एक दो प्रकार के टॉवेल। अब बाबा ने पूरी स्वच्छता सिखाई, हर एक का अपना साबुन, अपना कंघा, अपना टॉवेल, अपनी थाली, जितनी स्वच्छता रखे आत्मा को सुकून लगता है ना, अच्छा लगता है ना, स्वच्छता है तो अच्छा लगता है। पवित्रता का पहला स्वरूप स्थूल लेवल पर स्वच्छता है। रोज नहाने लगे। सादगी भी आ गई, स्वच्छता भी आ गई, व्यवस्थितता। आज बाबा ने कहा ना, तुम्हारे में बड़ी रॉयलिटी होनी चाहिए। राजयोगी या राज ऋषि, रॉयलिटी के संस्कार। बाबा ने मन और बुद्धि को इतना भरपूर कर दिया, हमारी नजर या बुद्धि कहीं डूबती नहीं। नहीं तो बुद्धि जाती रहती है ना चीजों में भी। तो देखो, हर प्रकार से डिटैच किया बाबा ने, खुराक में भी, कपड़ों में भी, चीजों में भी। अपना स्वमान नहीं था तो औरों से ही कंपेयर करते रहते थे ना, कि इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, है ना? अब वही बातें कितनी हल्की हमें लगती है कि हम कहां इन चीजों में लगे हुए थे। हमारा आहार शुद्ध हो गया, हमारे वस्त्र, हमारा रहना स्वच्छ हो गया। बाबा ने हमें और ही कितनी अच्छी चीजें सिखाई। क्योंकि सत्य ज्ञान से वैराग्य आता है, ज्ञान मिला आंतरिक वैराग्य उत्पन्न। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया ना। यहां कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, प्रेशर नहीं करता है, पर ज्ञान ही ऐसा है, परख शक्ति आ गई कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, क्या सार है क्या असार है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये परख आ गई हमारे। और जो अपवित्र है असत्य है वहां से वैराग्य हो गया, बुद्धि का लंगर उठ गए। ये मुख्य चीज है। कहते हैं ना कि सारी रात वो नैया चलाता रहा चलाता रहा, सवेरा हुआ उजाला हुआ किनारा ही नहीं आया, तो देखा तो पता चला कि लंगर ही नहीं उठाया था। हम भी अपनी जीवन नैया को पार कर रहे हैं ना। अब हमें कलयुग का किनारा छोड़ दिया है, हम संगम युगी हैं। वो यात्रा पूरी हो गई, कलयुग से निकलकर संगम युग में आ गए। तो देखो हरेक अपने आप को देखो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है निरंतर स्मृति स्वरूप बनना। हमें निरंतर सही स्मृति रहे हर बात की। बाबा ने तो हर बात का सही ज्ञान दिया है, वो सत्य भूले नहीं, भूलते हैं तो अवस्था ऊंची नीचे होती है। पर वो स्मृति निरंतर तभी रहेगी जब हमारा, अभी भी संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, किनारा छोड़ देना। तो अपने आप को चेक करना है कि हम अभी भी कहां फंसे हुए हैं, कहां अटके हुए। चीजों का आकर्षण अपने को उपराम करना है, खुद ही खुद को उपराम कर। पहले जमाने में 2-3 साबुन मिलते थे, लक्ष, लाइफ बॉय और हमाम रेक्सोना बस। और आजकल कितना विस्तार, पहले वही एम्बेसेडर और फियाट गाड़ी मॉडल मिलते थे, और आजकल हर आए दिन हर कंपनी के नए मॉडल। तो आप देखो कितना विस्तार है, क्योंकि लोगों के मानस को उन्होंने पढ़ लिया ना बिजनेस वालों ने, तो नई नई चीजें निकालते रहते। विदेश के लिए कहते हैं ना कि नई चीजें ले आते हैं, थोड़े दिन के बाद उब जाते हैं, मन हट जाता है, वो सारा समेट के फेंक देते हैं, नया ले आते। तो कितना विस्तार है आप देख लीजिए, कितने प्रकार के क्रीम, कितने प्रकार के पाउडर, कितने प्रकार के तेल, शैम्पू, क्या क्या मिलता है। अगर बुद्धि उसमें होगी तो भटक जाएंगे, है ना, मुंज जाते हैं क्या लेवे और क्या ना ले। फालतू खर्चा कितना होता है, सिर्फ आकर्षण मात्र से लेते रहते। इसलिए कहते हैं ना आजकल शॉपिंग का शौक ज्यादा हो गया। पहले जमाने में इतना बॉडी कॉन्शियस नहीं थे लोग, अब है। पर अच्छा है हमें बाबा मिल गए, सही ज्ञान मिल गया। आवश्यकता और इच्छा दो में अंतर है ना, जो जरूरी है वो हमें लेना है, बाकी इच्छा का तो कोई अंत नहीं। तो उपराम है ना सभी देह से, माताएं भाइयों को तो वैसे ही शौक की चीजें कम होती है, पर बहनों के लिए तो बहुत ढेर चीजें हैं। पर बाबा ने तो देह भान स्त्री भान से ही ऊपर कर दिए कि तुम तो आत्मा, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं गलत, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली आत्मा शक्ति हूं। ये रियलाइजेशन बहुत गहरी चाहिए। तो बुद्धि इन सब दैहिक आकर्षणों से ऊपर उठेगी। हमारी मुख्य तपस्या ही ये है। आत्मभिमानी बनना, ये ही हमारी मुख्य तपस्या है। अगर ये साधना आपकी कच्ची है तो जो वृत्ति में संस्कार में शुद्धि आनी चाहिए वो नहीं आएगी। संबंधों के भान से भी बाबा ने ऊपर उठा दिए। एक तो पवित्रता से संबंध शुद्ध हो गए और ये हमारा अलौकिक जन्म है, नया जन्म है। बाबा कहते हैं इस अलौकिक जन्म में बाबा ने सबको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाया है, कोई और संबंध नहीं है। हम एक ही ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। एक ब्रह्मा कुमारी बहन के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? ऐसा ही व्यवहार घर में भी करना। अपनी आत्मिक शुद्ध दृष्टि। पता है ना, ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू शुरू में आत्मा समझने का पाठ कितना पक्का किया। बाबा लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा बाबा की युगल का नाम, नारायण आत्मा है, नारायण बेटे का नाम, राधिका आत्मा है, बाबा की पुत्र वधू का नाम राधिका। तो बाबा लिखते थे और आत्मभिमानिता का पाठ पक्का करते। तो घर गृहस्थ में रहते हुए यात्मिक दृष्टि वृत्ति का पाठ पक्का कर। हम रोज देह भान से बार बार न्यारे होते हैं, क्योंकि यही अंतिम जन्म है जो बाबा हमें तैयार करते हैं कि अंत में हमारी बुद्धि किसी में भी न रहे। कहते हैं ना, अंते या मति साएव गति, और अंत में वो ही याद रहेगा जो जीवन भर हमने याद रखा है। तो हम सभी कितने सालों से बाबा के बने हैं और तब से हमारा अटेंशन कौन सी स्मृति पर है? आत्मा की स्मृति पर, बाबा की याद पर। तो बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, बुद्धि कहीं फंसेगी नहीं। और शुरू से देखो, पहले बाबा ने कमल फूल बनाया, हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाया। क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, क्या खाना, है ना, सबको शुद्ध किया। लौकिक परिवार में भी कमल फूल समान रहते हैं, अलौकिक परिवार में भी कमल फूल समान रहते, न्यारा और प्यारा। बाबा ने बताया ना कि प्यारा बनना आता है, पर जब न्यारा बनने की आवश्यकता है तो न्यारा नहीं हो पाते। देवताओं की महिमा गाते हैं ना, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हर कर्मेंद्रिय शुद्ध कमल फूल समान। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म हुए, हुए कि नहीं हुए, हर कर्मेंद्रिय से विकर्म। अब हमारा लक्ष्य है हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है। तो अटेंशन देना, आंखों से इशारा करके, भवें चढ़ा के करते थे ना, कर्म विकर्म तो हुए ना, आंखों से, कानों से, मुख से तो हुए। कई बातों में नाक चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे इशारा करते हैं ना एक दो के लिए, तो देखो हमने हर कर्मेंद्रिय से गलत काम किए। अब मुझे अटेंशन रखना है कि मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बन। ये समय है हरेक को अपने ऊपर अटेंशन देना। अगर लक्ष्य है कि बाप समान संपन्न और संतुष्ट संपूर्ण बनना ही है, देखो भौतिक रूप से भी घर में चाहते हैं ना कि जो जरूरी है वो हर सुविधा हमारे पास, हमारे पास ये है ये है ये है ये है, पर ये नहीं है, है? तो देखो संतुष्टि नहीं होती, जो है उसका आनंद नहीं लेंगे, जो नहीं है वो बार बार माइंड होता है। तो क्यों बाबा संपूर्ण बनने की बात करते हैं, समझ गए ना? तभी हमें पूरी संतुष्टि और प्रसन्नता आएगी। आज हम सभी ने कितनी ऊंची धारणाएं की है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारा जीवन पवित्र है, अन्न शुद्धि की धारणा करते हैं, हम रोज अमृत वेले उठते हैं, कितनी ऊंची धारणा है। हम रोज मुरली क्लास करते, व्यसन फैशन फिल्में होटल सबसे मुक्ति, कितनी ऊंची धारणा। फिर भी हमारे नजदीक रहने वाले लौकिक या अलौकिक हमारी कमजोरी की ही बातें करते रहते। देखो इतनी ऊंची धारणाओं की नहीं कोई करता है, पर जो कमी है वो ही बातें की जाती है कि ये रोज ज्ञान योग करते हैं पर ये गुस्सा भी करते हैं, ये रोज क्लास में जाते हैं तेरी मेरी करते हैं, बहुत जल्दी इनका मूड ऑफ होता है। कुछ भी जो कमी है वो ही नोटिस की जाती, तो अपने आप में सोचने की बात है कि इन छोटी मोटी कमियों के कारण अभी भी वही बातें हमारी होती हैं, तो हम इन कमियों को क्यों नहीं छोड़ते, क्यों हमें इससे वैराग्य नहीं। मेरे अंदर वो कमी है, बाबा कहते हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़े बड़े शत्रु तो जीत लेते, पर छोटी मोटी कमियों में उलझे हुए, उसमें हम अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते और इन कमियों के कारण ही हम साधारण बन गए। हम इतने अलौकिक क्यों अनुभव नहीं होते? इसलिए लक्ष्य पक्का रखना है कि ये छोटी मोटी कमियां भी खत्म करनी। वरना हमारा योग डायरेक्ट बाबा से है। बिचारे भक्ति में तो धर्मात्मा महात्मा किस किस को याद करते रहते हैं। हमारा योग डायरेक्ट बाबा से, हमारे पास संपूर्ण सत्य ज्ञान है। भक्ति में तो ज्ञान नहीं है, हमें तो हर बात बाबा ने समझाई। व्यावहारिक जीवन की हर छोटी मोटी बातें बाबा ने समझाई। संपूर्ण बनने की हर सूक्ष्म बात बाबा ने समझाई। तो मुझे खुद खुद पर एकाग्र होना होगा कि ये छोटी मोटी कमियां जो मुझे लौकिक बना देती है, साधारण बना देती है, मेरी अलौकिकता दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये कमियां मुझे क्यों रखनी? खुद वैराग्य लाओ। पहले हम लौकिक की करते थे, लौकिक में थे, अब अलौकिक में करते हैं। प्रवृत्ति तो वही रही ना, वृत्ति तो वही रही, हमने पात्र बदल दिए कि पहले दुनिया वालों की, लौकिक वालों की बातें करते थे, अब हम अलौकिक की करते हैं। तो अब आवश्यक है कि हम इन बातों से ऊपर उठ जाएं। चलो अपने आप को तो मैं संपूर्ण बना लूं। बाबा हमें इतना कहते हैं, इतना समझाते हैं, इतने विस्तार से और इतनी गहराई से बाबा ने हमें हर बात समझाई। किस लिए? कि हमें अब इन कमजोरियों से वैराग्य आ जाए। ये भी एक प्रकार की आसक्ति ही है ना, कि मेरे में ये चीजें क्यों है? मेरी इच्छा के बिगर तो मेरे में कमजोरी नहीं रह सकती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी माना निमित्त भाव से करना है। अलौकिक सेवा करो, लौकिक परिवार को चलाओ, आप वहां निमित्त है, हम यहां निमित्त है। पर हम अलौकिक है, तो अब हमारे में वो लौकिक संस्कार नहीं आने चाहिए। हमें बाबा की इतनी पालना मिली, अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं ना सभी, कौन कौन मिले? काफी भाई बहने मिले। हमें इतने सालों दादियों की पालना मिली, इसके बावजूद भी कितने परसेंटेज पर हम पहुंचे, किस लेवल पर हम पहुंचे। हर एक अपने आप को क्या समझते हैं, किस लेवल पर पहुंचे। अब तो वो पालना समाप्त हो गई, बाप दादा का पार्ट संपन्न हो गया, दादियां भी एडवांस पार्टी में चल गई। अब अगर मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो मुझे ही दृढ़ता करनी होगी। हमने दुनिया में कोई बहुत विशेष काम नहीं किया। हम कहते भी हम तो बाबा के बन गए, ज्ञान में आ गए, इसलिए हमारा दुनिया में कोई लक्ष्य ही नहीं रहा है ना? नहीं तो दुनिया में भी देखो आत्मबल से लोग कितने आगे बढ़ते। पर हम यही कहते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो ज्ञान में आ गए तो हमारा वो दुनिया तो लक्ष्य ही नहीं रहा। ठीक है, हम दुनिया से न्यारे हो गए, वहां हमने कोई विशेष काम नहीं किया, पर अब जो ज्ञान और योग हमने हाथ में लिया है उसमें हम विशेष क्या बने। इसमें हमारी एकाग्रता कितनी, ज्ञान और योग तो लाइफ के लिए चुना है ना? हम क्या कहते हैं, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। हमने ज्ञान और योग लाइफ के लिए स्वीकार किया तो उसमें तो हमारी मास्टरी आनी चाहिए। आज दुनिया में भी है ना स्पेशलाइजेशन का समय है, एक्सपर्टाइजेशन का समय। भई आप MBBS हुए कोई वैल्यू नहीं, स्पेशलाइजेशन चाहिए आगे हर चीज में, हर बात में। हमने संगम युग में किस बात में स्पेशलाइजेशन किया है? भाई हम योग में मास्टर बने, स्थिति बनाने में बने, हमारे संकल्पों में शक्ति, हमारे शब्दों में शक्ति, हम अनुभूति करा सके, उसके लिए चाहिए कि हम टोटल फोकस हो जाएं बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति, तपस्या के प्रति। इसलिए भट्टी में आते हैं, वहां तो इतनी फुर्सत नहीं होती है? क्लास के बाद भागने ही लगते हैं ना सब, नौकरी पर जाना, घर काम करना, वहां टाइम नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने भट्टियां रखी कि यहां आप आओ, फुर्सत से आओ, अपने आप को देखो। जानते हैं ना यही संगम का समय है जब हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपने लिए जो पुरुषार्थ करना चाहें कर सकते हैं। और जन्म में ज्ञान भी नहीं होगा, बाबा भी नहीं आया होगा, है ना। ये यही एक अंतिम जन्म का समय है जब हम अपने आप को जितना ऊंचा उठाना चाहें, जितना पवित्र बनाना चाहें, जितना दिव्य बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। इसलिए बाबा लक्ष्य देते हैं कोई भी विकार का अंश भी न रहे। काम क्रोध खराब है तो लोभ मोह अच्छे हैं क्या? नहीं। हर विकार आत्मा को बांधने वाला है, गिराने वाला है। आज भी बाबा ने कहा ना, मम्मा बाबा कहते हो तो तख्त नशीन बनकर दिखाओ, फॉलो करके बताओ, वारिस बनकर दिखाओ। कितना उमंग उत्साह बाबा हमारे में भरते हैं। अब समय है खुद खुद को देखें, खुद खुद के लिए दृढ़ता करें। जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे हम बन नहीं पाएंगे। भक्ति में तो इसलिए भटक रहे थे कि ज्ञानी नहीं था सत्य। अब तो सत्य मिल चुका न, भगवान मिले और भगवान ने संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। अब हम उनकी धारणा का स्वरूप बन सकते। इसलिए बुद्धि में ये रखना है कि हम योगी हैं, तपस्वी हैं। बाबा ने कहा न, बेहद के वैरागी है, बेहद के सन्यासी है, राज ऋषि है। लोग महसूस करें जो हमारे साथ घर में रहते हैं, जो हमारे साथ नौकरी धंधा करते, लोग अनुभव करें कि हमारे बीच में ये तपस्वी लोग हैं, सच्चे योगी है ये। इनकी तपस्या से हमारी नैया भी पार हो जाएगी, ये अनुभव करें। ये ज्ञानी हैं, जानते हैं, ये धारणा वाले हैं, ये भी जानते हैं, ये बहुत सेवा करते हैं, ये भी जानते हैं, पर ये योगी हैं, तपस्वी हैं। कर सकते हैं कि मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। मुश्किल तो मार्ग ही नहीं है, बाबा ने हमें सहज मार्ग ही बताया है, है ना। मैं कई बार सोचती हूँ कि बाबा अगर हमें ये ज्ञान योग का मार्ग नहीं बताते तो हम तो इतनी कठिन साधना कभी कर ही नहीं पाते। कितनी कठिन साधना लोग करते, बाबा ने हमें सहज बताया है, हम आराम से योगी तपस्वी बन सकते हैं। बस अपने आप को लक्ष्य दो, हमारे से ये अनुभूति हो कि ये योगी आत्मा है, ये तपस्वी आत्मा है। अच्छा लग रहा है सबको भट्टी में, हाँ। ओम शांति।
You.